بسم الله الرحمن الرحيم باب فضل من علم وعلم. یہ باب فضیلت کے بیان میں ہے جس نے علم حاصل کیا اور دوسرے کو علم سکھلایا. ترجمۃ الباب کا پہلا مقصد ظاہر ہے کہ جس نے علم حاصل کیا اور علم دوسرے کو سکھلایا, یہ بڑا فضیلت کا, بڑا نیکی کا, بڑا بھلائی کا عمل ہے. لہذا یہ عمل کرو. علم سیکھنا بھی فضیلت کا کام ہے اور علم دوسروں کو سکھلانا بھی فضیلت کا کام ہے. یہ کام کرو. دوسرا مقصد, معلم اور متعلم کے فضائل کا بیان ہے. تیسرا مقصد, تعلیم اور تعلم پر تحریض ہے. تحریض ابھارنا, تعلیم اور تعلم پر تحریض ہے یعنی ابھارنا ہے. نمبر چار, علم پڑھ کر کے علم دوسروں کو پڑھاؤ, اس بات کی ترغیب دینا ہے کہ علم پڑھا تو اب علم دوسروں کو جا کر کے پڑھاؤ. تو یہی سب ابواب چل رہے ہیں. پیچھے والا باب تھا علم کے لیے خروج کا, تو ظاہر ہے کہ سفر اس نے علم کے حاصل کرنے کے لیے کیا, تو یہ فضیلت کا سفر ہو گیا. اس طرح دونوں باب میں ربط بھی ہو جائے گا کہ خروج فی طلب العلم یہ فضیلت کے حصول کا سفر ہے. جی یہ جو سند ہے محمد ابن اعلیٰ سے لے کر نبی موسیٰ, یہ سند بخاری شریف میں تقریباً 43 جگہ پر ہے. 43 اور 3 مقامات پر یہ سند امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں, اور 43 مقامات پر تقریباً 39 روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سند سے نقل کی ہے. 29 روایت یا 39 روایت اس سند سے نقل کی ہے. اس سے اندازہ لگاؤ کہ یہ بڑی اہمیت کی حامل سند ہے کہ 43 مقامات پر امام بخاری نے اس سند کا سہارا لیا ہے. اور 39 کے قریب روایات صحیح میں اس سند سے لی ہے. اس حدیث کو سمجھنے سے پہلے خلاصہ سمجھ لیں. اللہ سبحانہ و تعالی بارش برساتے ہیں, بارش اللہ کی رحمت ہے, اللہ کی نعمت ہے. وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ. قرآن مجید میں بارش کو رحمت سے تعبیر کیا گیا ہے, اللہ کی رحمت ہے بارش کا برسنا. اب بارش جب برستی ہے تو تین طرح کے حالات ہوتے ہیں, تین طرح کی زمین کے اعتبار سے, تین طرح کی زمین, لہذا تین طرح کے زمین کے حالات. نمبر ایک, بعض زمینیں ایسی ہوتی ہے کہ وہ پانی کو جذب کرتی ہے, اپنے اندر چوس لیتی ہے, اگانے کی بہترین صلاحیت رکھتی ہے. ایسی زمین کو اردو میں کہتے ہیں زرخیز زمین, اور ہماری گجراتی میں کہتے ہیں فڑ دروپ زمین. پہلی قسم کی زمین بہترین زمین, بارش برسی, اس نے پانی اپنے اندر جذب کر لیا, اپنے اندر اتار لیا, اور پھر وہ جو ہے ہریالی اگائے گی, گھاس پھوس اگائے گی, بہت سارے پودے اور درخت اگائے گی. یہ پہلی قسم کی زمین ہے, بہترین زمین ہے, اعلیٰ قسم کی زمین ہے. تو اس نے بارش کے پانی کو اپنے اندر جذب کیا, اپنے اندر چوس لیا, اتار لیا, اور پھر بعد میں چل کر کے اس سے بہترین ہری بھری گھاس پودے سبزی اگ نکل دی. نمبر دو, بعض بارش, بعض زمینیں ایسی ہوتی ہے کہ وہ پانی کو اپنے اندر جذب نہیں کرتی, چوستی نہیں, پتھریلی زمین, لیکن اس پتھریلی زمین کے اندر کچھ گڑھے ہوا کرتے ہیں. گڑھے یعنی کھڈے. جب اس کے اوپر بارش برسے گی تو بارش کا پانی زمین کے اندر جذب نہیں ہوا, زمین کے اندر اترا نہیں, لیکن گڑھے بھر گئے پانی کے. اس کو ہماری گجراتی میں کہتے ہیں کھابوچیے بھرا گئے پانی کے, گڑھے بھر گئے پانی. اب وہ زمین ہے سنگری, سنگریلی زمین, پانی اندر جذب نہیں ہوا لیکن زمین میں گڑھے ہیں, اس لیے پانی گڑھوں میں جمع ہوا. فائدہ یہ ہوا کہ پتھریلی زمین ہے اور پانی جذب نہیں کیا, اسی لیے ہریالی تو اگے گی نہیں, گھاس تو نکلے گی نہیں, سبزی تو اگے گی نہیں, لیکن وہ جو پانی کے گڑھے بھر گئے اس سے لوگ سیراب ہوں گے, لوگ پانی بھر بھر کے لے جائیں گے کہ بھائی یہ گڑھے ہیں, جانور پیئیں گے, لوگ بھر کے لے جائیں گے. آپ نے مشکا شریف میں حدیث پڑھی ہے غزوہ بن المصطلق سے واپسی کی, وہ سب صحابہ نے پانی کے گڑھے روکنے کے لیے, کسی نے زیرہ رکھ دی, کسی نے ڈھال رکھ دی, کسی نے کیا رکھ دیا, तो ये दूसरी किस्म की जमीन, पानी जज्ब तो नहीं हुआ लेकिन गढ़े हैं और गढ़ों में पानी भर गया, और गढ़ों में पानी भरने की वजह से वो पानी जानवर पिएंगे, लोग भी ले जाएंगे, वहाँ खेती तो होगी नहीं क्योंकि पथरीली जमीन और अंदर गया भी। तीसरी किस्म की जमीन चटियल हमवार जमीन, जमीन चटियल है और हमवार है। अब बारिश उसके ऊपर बरसी तो बारिश के बरसने की वजह से वो पानी अंदर जज्ब भी नहीं हुआ, मिट्टी ने जमीन ने पानी को अंदर चूस नहीं लिया, जज्ब नहीं हुआ, नीचे उतरा नहीं। और हमवार और चटियल है इसलिए सारा पानी बहके चला गया, गड़े भी नहीं बने, खड्डे भी नहीं बने, सारा पानी बहा करके चला गया। ये तीसरी किस्म की जमीन और उसके ऊपर गिरने वाली बारिश। तो तीसरी किस्म की जमीन ऐसी है, हमवार है, चटियल है, बारिश बरसी, अंदर पानी जज्ब भी नहीं हुआ, जमीन ने पानी को चूस भी नहीं लिया और गड्ढे भी नहीं है, सारा पानी बह करके कहीं चला गया, किसी को फायदा नहीं, न जमीन का फायदा नहीं, इंसानों का फायदा। ये तीन तरह की जमीनें हुआ करती है। अब समझो इस मिसाल का मकसूद क्या। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शरीयत, जो दीन, जो वही लेकर के तशरीफ लाए, जो दीन का इल्म लेकर के आप तशरीफ लाए, उसकी मिसाल बारिश की तरह है। कुरान के कई आयतों में वही को बारिश से तशबीह दी है, कई आयतों के अंदर। जिस तरीके से जाहिरी बारिश से बंजर जमीन लहलहा उठती है, इसी तरह वही के फैजान की वजह से बंजर दिलों की जमीन पर ईमान लहलहा उठता है। कुरान में कई जगहों पर यह तशबीह मौजूद है। तो हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इल्म लाए, जो शरीयत लाए, जो दीन लाए, अल्लाह के यहाँ से जो वही लाए, इसकी मिसाल है बारिश की तरह। अब इंसान तीन तरह के हैं, दिल जमीन यानी दिल, इंसान तीन तरह के, जमीन की तरह इंसान भी तीन तरह के। नंबर एक, बहुत सारे इंसान वो हैं जिन्होंने इस वही को अपने अंदर जज्ब कर लिया, अपने अंदर उलू में वही को, उलू में शरीयत को, उलू में दीन को अपने दिल दिमाग के अंदर जज्ब कर लिया, अंदर उतार लिया, खुद भी उस उलू में वही पर अमल किया और दूसरों को भी अपने इल्म से फ़ायदा पहुंचाया। यह बेहतरीन ज़मीन की मिसाल, उलू में वही, उलू में शरीयत, उलू में दीन अपने दिल दिमाग में उतार लिया, खुद भी अमल किया, दूसरों को भी फ़ायदा पहुंचाया, यानी इल्म सीखा, इल्म पर अमल किया और दूसरे लोगों को इल्म का फ़ायदा पहुंचाया। ये बेहतरीन किस्म के लोग, शानदार किस्म के लोग। नंबर दो, बहुत सारे इंसान वो होते हैं कि वही का इल्म, दीन का इल्म, शरीयत का इल्म उन्होंने लिया लेकिन खुद अमल नहीं किया, अपने दिल दिमाग में उतारा नहीं, खुद अमल भी नहीं किया अपने दिल दिमाग में उतारा भी, लेकिन है इनके पास इल्म, दूसरों को दिया, दूसरों को दिया, ले हमारे पास इल्म है ले जा, खुद भी अमल नहीं किया और खुद की जिंदगी भी ठीक नहीं की, खुद अमल नहीं किया, खुद के दिल दिमाग में इल्म उतारा नहीं और खुद की जिंदगी सही नहीं की। हाँ, दूसरों को दिया कि लो हमारे पास इल्म है ले जाओ, ये दूसरी किस्म के इंसान है, वो घटिया इंसान है, किसी दर्जे में फायदा मंद है लेकिन फीस आते ही घटिया है, मुतादी होने के एतबार से फायदा और लाजिम होने के एतबार से घटिया है, कि खुद उन्होंने अमल नहीं किया, अपनी जिंदगी उस्तवार नहीं की लेकिन दूसरों को फायदा पहुंचा दिया, तो दूसरी किस्म के इंसान है। नंबर तीन, बहुत से इंसान ऐसे हैं कि शरीयत और वही का इल्म आया, खुद भी फायदा नहीं उठाया, अपने अंदर भी जज्ब नहीं किया, दूसरे को भी नहीं पहुंचाया, कोरे के कोरे, न लाजिम फायदा न मुतादी फायदा, न खुद सीखा न खुद हासिल किया न खुद अपनी जिंदगी में उतारा न दूसरों को पहुंचाया, कुछ भी नहीं किया, एकदम घटिया किस्म के इंसान, एकदम घटिया। कि शरीयत वही उलूम दीन नबुवत का फैजान आया, खुद अपने दिल दिमाग में नहीं उतारा, अपनी जिंदगी में नहीं उतारा, खुद भी अमल नहीं किया, दूसरों को भी नहीं पहुंचाया, एकदम घटिया किस्म के इंसान। समझ में आ गए तीनों तरह की जमीन और तीनों तरह के इंसान। अब एक बात और समझो, ये तीन किस्म की जमीन और तीन किस्म के इंसान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में बयान फरमाए। फिर जब हदीस के अंदर मुशख्खस करने की बात आई, यानी मुमस्सल और मुशख्खस करके बयान करें, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अव्वल किस्म और तीसरी किस्म को मुशख्खस किया, दूसरी किस्म को मुशख्खस नहीं किया, अव्वल किस्म और तीसरी किस्म को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशख्खस करके मुमस्सल करके बयान करो, तीसरी किस्म को बयान नहीं करो, इसलिए शुर्राए हदीस परेशान कि दूसरी किस्म को मुमस्सल और मुशख्खस क्यों नहीं किया, पहली और तीसरी को हुजूर ने मुमस्सल भी किया मुशख्खस भी किया, दूसरी वाली को क्यों नहीं किया मुमस्सल मुशख्खस। समझ रहे हो बात को? अब हदीस शरीफ के अल्फाज दे। अन अबी मूसा रदी अल्लाहु ताला अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू मूसा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल करते हैं, قال आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वसलु मा बअसनी अल्लाहु बिही मिनल हुदा वल इल्म। देखो लफ्ज़े मसल बोला है लेकिन अजीब शान वाली सिफत मुराद है, मसल बोल के मुराद क्या है? अजीब शान वाली सिफत। अल्लाह ताला ने मुझे जिस हिदायत और इल्म को लेकर के भेजा है, अल्लाह ताला ने मुझको जिस हिदायत और इल्म को लेकर के भेजा है। अब देखिए ये दोनों अतफ़े तफसीरी भी हो सकते हैं, हिदायत और इल्म, कि जो हिदायत वो इल्म, जो इल्म वो हिदायत, और ये भी हो सकता है कि हिदायत बमाना ईमान ले लो, हिदायत ईमान, और इल्म बमाना इल्म, अच्छा बराए मुगायरा, ये भी मुराद हो सकता है। उसकी मिसाल बारिश की तरह है, हिदायत और इल्म की मिसाल बारिश की तरह है। लेकिन याद रखो, इल्म से मुराद लेने का इल्म शरई, इल्म से मुराद लेने का इल्म दीनी, इल्म शरई, उसकी मिसाल बारिश की तरह है। बाकी ये तुम जो शिक्षण लेने जाओ, न कहो कि वो इल्म की हदीस में मिसाल आई है। कॉलेजों में पढ़ने जाओ, यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाओ और कहो उसकी मिसाल हदीस में आई है, तो गुमराही है, जहालत है, ये इसकी मिसाल नहीं है। और इल्म है ही नहीं, वो तो हुनर है, हुनर, पैसे कमाने का हुनर। इंजीनियर बन के पैसे कमाएंगे, डॉक्टर बन के पैसे कमाएंगे, उसका हुनर है वो तो। वो इल्म कहलाने के काबिल नहीं है। इसलिए इल्म शरी मिसाल मुराद लेने का इल्म से, बारिश की तरह है, कमसलिल गैसिल कसीर, कसीर बारिश की तरह है। देखो अल गैसिल कसीर का मतलब समझो, ऐसी बारिश जो हर वक्त बरसे, ज्यादा मिकदार में बरसे, अपने वक्त के मुताबिक हर वक्त बरसे और ज्यादा मिकदार में बरसे। अल गैसिल कसीर में दोनों चीज शामिल है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मुबारक तालीमात लेकर तशरीफ लाए, वो मुर्दा दिलों को जिंदा करने का जरिया है। जिस तरह बारिश मुर्दा जमीन को जिंदा कर देती है, हरी भरी कर देती है, इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई तालीमात ये भी मुर्दा जमीन को, दिल की मुर्दा जमीन को जिंदा करने का जरिया है। असाबा अर्दन, एक जमीन पर बरसी, फकान मिनहा नकियतन, नकिया किसको कहते हैं, तय्यिबतन, वो जमीन साफ सुथरी थी, जरखेज थी। नकिया के माने क्या, वो जमीन साफ सुथरी थी और जरखेज थी। देखो जो जमीन साफ सुथरी नहीं होती है ना, वहां खेती अच्छी नहीं उगा करती। इसीलिए आप देखेंगे काश्तकार लोग बारिश से पहले जमीन की सफाई कराते हैं, नकिया साफ सुथरी, जरखेज, यानी जो जमीन अंदर पानी जज्ब कर लेवे और दरख्तों को उगावे, अंदर पानी जज्ब भी गया और दरख्तों को उगाया, नकिया। कबीलतिल मा, उसने पानी को कबूल कर लिया, उस जमीन ने पानी को यानी चूस लिया, अंदर जज्ब कर लिया, अंदर उतार लिया। फंबततिल कला, कला और दूसरा लफ्ज आया उष्म, दोनों में फर्क है थोड़ा सा। कला उन कहते हैं ऐसी घास को जो सूखी हो या हरी भरी हो, सूखी हो या हरी भरी हो, जिस घास को जानवर रगबत के साथ खावे, जिस घास को जानवर रगबत के साथ खावे, जैसे जवार बाजरे की घास। जवार बाजरे की, देखो जवार बाजरे की जिस तरह खेती होती है ना, दाना लेने के लिए, अनाज लेने के लिए, इस तरह जवार बाजरे की खेती होती है जानवरों को खिलाने के वास्ते भी। उसको ज्यादा जो है ना खाद नहीं देते, ऐसे जवार लगा दी, जैसी होगी बड़ी बड़ी होगी काट के जानवर को खिलाएंगे, दूध बढ़ जाता है जानवर का, जवार बाजरे का चारा खिलाने। अगर उसको आप बढ़ने दो और दाने आएंगे तो दाने अच्छे नहीं आएंगे, दाने तक इंतजार करना आपको महंगा पड़ेगा, उसको हरी हरी काट के ले जाके जानवरों को खिला दिया जाता है और जानवर ऐसी घास रगबत से खाते हैं दूसरी घासों के मुकाबले में। तो कला ऐसी घास को कहते हैं जिसको जानवर रगबत से खाते हो और ये घास सूखने के बाद पीली नहीं पड़ती है, पीली नहीं होती आमतौर पर, ये सूखने के बाद जो है ऐसी हो जाती है मुरझा उर्जा के खत्म हो जाती है, जलाने के काम आती है। फिर दूसरी घास कौन सी लाए, उष्ब, उष्ब। आम तौर पर ये हरी भरी घास को कहा जाता है हरी भरी घास, और ये जो है ना उष्ब उसकी सिफत लाए अल कसीर, ज्यादा मकदार में, ज्यादा मकदार की ये घास। ये घास सूखने के बाद पीली पड़ जाती है। अब आप देखेंगे दो तरह की घास होती है, आजकल बारिश की मौसम में हरी भरी घास आसानी से मिल जाती है, तो जानवर पालने वाले लोग ज्यादातर जानवर को हरी भरी घास खिलाएंगे। फिर जब हरी भरी घास मयस्सर नहीं होती है तो ये चावल के अंदर से जो घास निकलती है वो सुखाने के बाद पीली हो जाती है, वो जानवर को बाद में खिलाई जाती है। ये हर घास की तासीर नहीं है। चावल जो होते हैं धान, उर्दू में उसको धान कहते हैं, चावल के पौधे को धान। तो वो धान जो होता है उसमें से चावल निकाल लिया, फिर जो उसकी घास रह जाएगी वो सूखने के बाद पीली पड़ जाती है। वो जो पीली हो जाती है उसको रहने देते हैं, हमारे यहाँ उसको पूरे टिया कहते हैं। फिर वो जो है जानवरों को खिलाते, वो खाते हैं जानवर शौक से खाते हैं। हर घास सूखने के बाद ही नहीं खाएंगे, लेकिन ये चावल की जो घास होते हैं सूखने के बाद खाते हैं ये। अलुष्बल कसी। अब देखिए कला में नबूवत है, बलीग है, दो मिसाल लाने में भी बड़ी हिकमत है। कैसे हिकमत है कि ये पहली किस्म की जमीन जैसा कि आपको बतलाया, वो लोग जो उलूम में नबूवत को हासिल करे, वही के उलूम को हासिल करे, खुद अमल करे, दूसरों को सिखलावे, अपने दिल दिमाग में उतार लेवे, ये इनकी मिसाल है। बराबर। तो यहाँ दो किस्म की घास से हदीस में मिसाल दी गई, एक कला दूसरा उष्ब, और उष्ब के साथ कसीर का लफ्ज आया। ये मिसाल दो घास की इस तरह होगी कि इल्म हासिल करके अमल करने वाले, दूसरों को पहुंचाने वाले उलमाए किराम भी दो किस्म के हैं। इल्म हासिल करके अमल करने वाले और दूसरों को पहुंचाने वाले उलमाए किराम भी दो किस्म के हैं। घास भी दो किस्म की आ गई ना, एक घास सूखने के बाद कोई जानवर खाता नहीं, दूसरी घास सूखने के बाद भी जानवर रगबत से खाएगा। उलमा भी दो तरह के, एक वो उलमाए किराम कि अब उनकी जिंदगी के अंदर उन्होंने खुद इल्म हासिल किया, खुद अमल किया, दूसरों को पढ़ाया सिखाया, लेकिन जैसे उनका इंतकाल हुआ उनका इल्मी फैज रुक गया, उनका इल्मी फैज क्या हुआ। ये है वो घास जो सूखने के बाद खाई नहीं जाती, जो घास सूखने के बाद खाई नहीं जाती, जिंदगी में रगबत से खाई जाती है, हरी होती है तब, सूखने के बाद खाई नहीं जाती। नंबर दो, बहुत से उलमाए किराम वो हैं कि जिन्होंने अपनी जिंदगी में इल्म हासिल किया, खुद अमल किया, दूसरों को पहुंचाया, और उनके इंतकाल के बाद भी उनका इल्मी फैज दुनिया में जारी रहता है। सूखने के बाद जो घास खाई जाती है, सूख गई यानी मर गई, मरने के बाद भी इल्मी फैज जारी। अब्दी के इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल के कितने सदियां हो गए लेकिन इनका इल्मी फैज जारी है। जो हजरात किताबें लिख के गए, मुसन्निबीन मौलवीन, जाके कब्रिस्तान में सो गए, लेकिन आज भी हम लोग इतनी सदियां गुजरने के बाद भी मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं करके मुदर्रिस तकरीर चालू करता है और उनको रहमत की दुआएं मिल रही है। मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया और सदके जारिया है, उनकी किताबें पढ़ी पढ़ाई जा रही है, मरने के बाद भी उनका इल्मी फैज जारी है। बहुत से उलमा ने तलामीजा की जमात ऐसी तैयार की, किताबें तो नहीं लिखी लेकिन तलामीजा की जमातें तैयार की, कि वो तलामीजा ऐसे हैं कि वो भी बाद में दूसरों को पढ़ावे, दूसरे तीसरों को पढ़ावे, इल्मी फैज चल रहा है। अब जो हमारी हदीस की सनद है कि भाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सनद, तो इस सनद के मशाइखिन कैसे हैं? सभी सनदिल मुत्तसिल उलमा तैयार हुए, ऊपर वालों ने नीचे वालों को पढ़ाया, नीचे वालों ने और नीचे वालों को और नीचे वाले को और नीचे वाले को, और इंशाल्लाह कयामत तक ये सिलसिला तो जाप चलता रहेगा, ये कड़ी चलती रहेगी, ये चेन चलती रहेगी, रूहानी चेन। ये है दो किस्म के उलमा, ये दो तरह की घास से दो तरह के उलमाए किराम की मिसाल हो गई। आगे फरमाया वकानत मिनहा अजादीब, बहुत सी जमीनें अजादीब होती है। अजादीब किसको कहते हैं? ऐसी जमीन नशेबी घड़े वाली, इसमें घड़े खड्डे हो, अब सख्त हो, पानी अपने अंदर जज्ब न करती हो लेकिन गहराव हो उसमें, अजादीब किसको कहेंगे? जदबुन की जमा, जो पानी को अपने अंदर जज्ब न करती हो, सख्त जमीन, पथरीली जमीन, पानी को अपने अंदर जज्ब न करती हो लेकिन गहराई वाली हो, नशे भी हो, घड़े वाली हो, अमसकत इल्मा, उसने पानी को रोक लिया, पानी जज्ब नहीं किया, हरियाली को उगाया नहीं लेकिन पानी को क्या किया? रोक लिया, घड़े बन गए पानी के, छोटे छोटे होस बन गए, खाबोचिए बन गए पानी के। फनफा अल्लाहु बिहन्नास, अल्लाह ताला ने उसके जरिए से लोगों को फायदा पहुंचाया, अल्लाह ताला ने उस पानी के जरिए लोगों को फायदा पहुंचाया। फशरीबू, लोगों ने पिया, वसकाओ, अपनी खेती को भी पानी पिलाया, वज़राओ, और खेती की, बाज़ रिवायत में राउहू का लफ्ज भी आया है, यानी कि जानवरों को चराया, जानवरों को चराया, ये काम किए इन्होंने, खुद भी फायदा नहीं उठाया, खुद भी अमल नहीं किया लेकिन दूसरों को फायदा पहुंचाया। बहुत से उलमा है ऐसे, इल्म है खुद अमल नहीं करते लेकिन दूसरों को फायदा पहुंच रहा है उनकी जात से, दूसरे उनसे इल्म हासिल कर रहे हैं। बहुत से मौलवी ऐसे पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, खुद अमल वमल कुछ नहीं करते, दूसरों को इल्मी फायदा हो रहा है, खुद की जिंदगी में अमल नहीं है। मसलुल्लज़ीन हुम मिलुत्तौरात थुम्मा लम यहमिलूहा कमसलिल हिमारी यहमिलु असफारा। साहिब तफ़सीरुल कुरान ने एक अजीब नुक्ता लिखा है, कि कुरान के अंदर दो जगह जानवर की मिसाल दी गई, एक ये और दूसरी इन तहमिल अलैहि यलहस औ तत्रुकुहु यलहस, कुत्ते की। और दोनों जानवर की बदतरीन मिसाल बेअमल आलिमों के लिए है। सिया को सबक देख लो, दोनों मिसाल जो इल्म हासिल करे खुद अमल ना करे उनके लिए दोनों मिसाल है। अरे इतने घटिया मौलवी होते हैं बाज लोग, वो मौलवी कहलाने के लायक ही नहीं, नमाज नहीं पढ़ेंगे, टाइम पे सबक पढ़ाएंगे नमाज नहीं पढ़ेंगे। हमारे हजरत मुफ्ती अहमद साहब के पास एक मदरसे से बाकायदा शिकायत आई, तो मौलाना लोग नमाज पढ़ने नहीं आते बाजमात मस्जिद में, घर में पढ़ लेते होंगे, हम उसने जन रखते हैं। अब उनको कहा गया कि भाई आप आइए मस्जिद में नमाज पढ़िए, तो कहा हमको नमाज के लिए कहने का नहीं है, ये हमारा प्राइवेट मामला है, हम मदरसे में घंटे के पाबंद हैं, घंटी पर आएंगे पढ़ा के चले जाएंगे, नमाज के लिए हमको कहने का नहीं, प्राइवेट मामला है हमारा, निजी मामला है। देख लिया कितनी बुरी चीज़ है। अच्छा एक चीज़ कुदरती है साल हाँ साल से अल्हम्दुलिल्लाह कि अव्वल घंटे के अंदर मैं बच्चों के चेहरों से पहचान लेता हूँ कि इसमें नमाज नहीं पढ़ी फजर की, साल हाँ साल से कुदरती चीज़। और सीधा कहता हूँ बुला के जाए तो पहले नमाज पढ़ के आ फिर सबक में बैठना है, तो भेज देता हूँ पहले नमाज पढ़ने, तो नमाज मुकद्दम है। तो ये है दूसरी किस्म के लोग, हम सकतिल मा फनफाल्लाहु बिहन्नास फशरिबु वसकौ वज़रअउ वअसाबत मिन्हा ताइफतन उखरा। और एक और जमात को ये बारिश वाली रहमत पहुंची, इन्नमा हिया की आनुन, वो जमीन थी शोर और चटियल, शोर यानी खारी जमीन, नमकीन जमीन, बिल्कुल चटियल हमवार जमीन, ला तुमसिकु माअन, वो पानी रोकती नहीं है, पानी उस पर टिकता नहीं है, पानी उस पर रुकता नहीं है, वला तुम भी तो कला अन, घास भी नहीं उगाती, घास भी वो उगाती घास वास कुछ नहीं उगता उसके ऊपर। फजाली का मसलु मन फकोह फकीह फी दीन इल्लाह, ये मिसाल है उस आदमी की जो अल्लाह के दीन के अंदर समझ पैदा करे, दीन का इल्म हासिल किया, फकाहत हासिल की, समझ पैदा की, व नफ़ाहु मा बासनी अल्लाहु भी, और अल्लाह ताला ने मुझको जिस इल्म लेकर के भेजा है उस इल्म ने उसको नफ़ा पहुंचाया, यानी उसको इस इल्म के ज़रिए नफ़ा पहुंचाया, उस इल्म के ज़रिए से अल्लाह ताला ने उसको नफ़ा पहुंचाया। फ़अलिमा वअल्लमा, उसने खुद इल्म हासिल किया और दूसरे को इल्म सिखलाया। तर्जमतुल बाब से मुनासबत इस जुज़ की हो जाएगी, फ़अलिमा वअल्लमा, यह है रब्त तर्जमतुल बाब से। अब एक को मुशख्खस किया, पहले को हुजूर ने बारिश की तीन, बारिश की, बारिश को लेने वाली तीन किस्म की ज़मीन और तीन किस्म के इंसान बयान किए। अब मुशख्खस करने का नंबर आया तो पहले ही किस्म के इंसान को मुशख्खस किए कि जो इल्म हासिल करे खुद अमल करे दूसरों को सिखला। अब तीसरा आदमी आया, वह मसलु मल्लम यरफा बिजालिक रासन, और उस आदमी की मिसाल कि जिसने उसके लिए सर तक नहीं उठाया, जिसने इल्म के लिए सर तक नहीं उठाया, यानी इंसान किसी की तरफ तवज्जो करे तो उसके लिए सर उठाता है, किसी की तरफ तवज्जो करना हो तो सर, और तवज्जो ही नहीं करना है तो सर भी नहीं उठाएगा। क्या मतलब हुआ कि उसने इल्म को कबूल भी नहीं किया और दूसरों को भी नहीं पहुंचाया, तवज्जो ही नहीं की, सर नहीं उठाया यानी ध्यान ही नहीं दिया, खुद इल्म कबूल नहीं किया, दूसरों को भी इल्म नहीं पहुंचाया। वलम यकबल हुदल्लाहिल्लज़ी उरसिलतु बिही, और उस हिदायत को उसने कबूल नहीं किया जिस हिदायत को लेकर के मैं भेजा गया, उस हिदायत को कबूल नहीं किया जिस हिदायत को लेकर के मैं, यानी कि जिस शरीयत जिस दीन वही को लेकर के अल्लाह ने मुझे मबऊस फरमाया, न उसने खुद सीखा न अमल किया न दूसरों को पहुंचा। ये घटिया तरीन इंसान है, बदतरीन इंसान है। लिहाजा इल्म सीखो, खुद अमल करो, दूसरों को पहुंचाओ, ये बेहतरीन इंसान है, बेहतरीन इंसान। अब यहाँ हजरत शुर्राए किराम बड़े परेशान हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन किस्म की ज़मीन बयान फरमाई, तीन किस्म के इंसान बयान फरमाए, और मुशख्खस करने का नंबर आया तो दो ही किस्म के इंसान बयान फरमाए, पहला और तीसरा। बीच वालों को हुजूर ने मुशख्खस नहीं फरमाया, क्यों ऐसा हुआ? तो एक जवाब बाज़े शुर्राए किराम ने बहुत अच्छा दिया कि दूसरी किस्म के इंसान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मौजूद ही नहीं थे, इसीलिए उनको मुशख्खस करने की ज़रूरत ही नहीं थी। इसीलिए कि जिन सहाबाए किराम ने ईमान सीखा, इल्म सीखा, और वो दूसरों को पहुंचावे और खुद अमल न करे, ऐसा हुआ ही नहीं। जिनको उलूमे नबुवत मिले और वो अमल न करे और दूसरों को पहुंचावे, ऐसा हुआ ही नहीं। तो जब दूसरी किस्म के लोग दौरे नबुवत में थे ही नहीं, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मुशख्खस नहीं। लेकिन दूसरी तौजीह सुनी, दूसरे नंबर के लोगों को क्यों बयान नहीं फरमाया? हज़रतुल उस्ताद मुफ्ती सईद साहब नवरल्लाहु मरकदहू ने उसको एक बहुत शानदार मिसाल से समझाया कि कुरान मजीद के अंदर अस्हाबुस सब्त का वाकिया अल्लाह ताला ने बयान फरमाया, इस्तातीहिम हितानुहुम यौम सबतिहिम शुर्रा व यौम ला यस्बितून ला ताअतीहिम, वो वाकिया बयान फरमाया। अब बयान करते करते जिन लोगों ने मछली का शिकार नहीं किया, दूसरों को रोकने का काम भी किया, उन लोगों के हुस्ने अंजाम को बारी ताला ने बयान फरमाया, खुद भी मछली का शिकार नहीं किया, दूसरों को भी रोकने का काम करते ही रहे करते ही रहे, उनका हुस्ने अंजाम के अल्लाह ताला ने उनको अजाब से नजात दी, बंदर खिंजीर बनाने की जो सजा आई उस सजा से अल्लाह ताला ने उनको नजात अता फरमाई। जिन लोगों ने मछली का शिकार किया उन लोगों का बुरा अंजाम भी बयान हुआ कि अल्लाह ताला ने उनको खिंजीर और बंदर की शक्ल में बदल दिया। लेकिन दरमियान के अंदर जो जमात थी, कौन सी जमात? कि जिन्होंने मछली का शिकार तो नहीं किया लेकिन रोकने का काम भी नहीं किया, मछली का शिकार तो नहीं किया लेकिन रोकने का काम भी, जिनको आजकल की महज़ब ज़बान में क्या कहते हैं, न्यूट्रल लोग, न्यूट्रल लोग, कि न्यूट्रल रहो अपने, बहुत रोकने नहीं जाने का वरना हितमत मसलियात कितने खड़े होंगे। इनके बारे में कुरान खामोश है कुरान इनके बारे में खामोश। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला नुमा इरशाद फरमाते हैं कि इन लोगों को भी अजाब से नजात मिली, अजाब उनको भी नहीं हुआ। क्यों? इसलिए कि उन्होंने मछली का शिकार नहीं किया था सनीचर को, इसीलिए इनके ऊपर अजाब नहीं आया, अल्लाह ने अजाब से नजात दी। लेकिन कुरान में तस्केरा क्यों नहीं हुआ इस दूसरी जमात का? अगर इस दूसरी जमात को नजात मिलने का तस्केरा कुरान में होता तो बतौर इस्तेहसान के ये लोग समझे जाते, मुस्ताहसन होने का उन्वान लग जाता उनके ऊपर कि ये भी बड़े अच्छे लोग थे कि अल्लाह ने इनका भी अंजाम कुरान में बयान फरमा दिया, इस्तेहसान का टाइटल लग जाता। हालांकि इन्होंने कोई अच्छा काम नहीं किया था, नहीं अनिल मुनकर छोड़ करके कोई अच्छा काम नहीं किया था, इसीलिए ये लोग इस्तेहसान की नजर से देखे न जावे, इसलिए बारी ताला ने इस दूसरी जमात का कुरान में तस्करा नहीं फरमाया। हजरतुल उस्ताद नवर अल्लाह मरकदो फरमाते कि यही हाल ही हदीस शरीफ में भी, इस हदीस शरीफ का हाल भी यही है कि ये दूसरी किस्म की जो जमात है कि जिन लोगों ने उलूम नबूवत को अक्स किया, अपने पास जमा किया, दूसरों को फायदा पहुंचाया, खुद अमल नहीं किया, उनको मुशख्खस क्यों नहीं किया? अगर उनको मुशख्खस किया जाता तो इस्तेहसान का उन्वान उन पर लग जाता, इस्तेहसान का अंदाज आ जाता इनके बारे में। और ये कोई मुस्तहसन जमात है नहीं कि इनके ऊपर इस्तेहसान का टाइटल लगे, इसलिए इनका तस्केरा हदीस शरीफ में मुशख्खस करके नहीं किया गया। अच्छा, अब एक जमात और बाकी रह गए जिनको इशारतुन नस के तौर पर इस हदीस में बयान किया गया, वो कौन सी जमात है? कि जो लोग ईमान नहीं लाते हैं लेकिन इल्म दीन हासिल करके दूसरों को फायदा पहुंचाते हैं, ईमान लाए नहीं लेकिन इल्म दीन हासिल करके दूसरों को फायदा पहुंचाते हैं। इशारतुन्नस से इस रिवायत में इनका तस्करा है। فَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ, इसमें इशारा इनकी तरफ, ऐसे लोगों की तरफ सरीह इशारा है। किताबुल मगाजी के अंदर आपने एक रिवायत पढ़ ली होगी या पढ़ेंगे, वहां रावी को शक है गजवे हुनैन के बारे में रिवायत है या गजवे खैबर के बारे में रिवायत है। वो वाकिया जो आपने मिश्कात शरीफ में भी पढ़ा है कि वो एक आदमी जो गजवे के अंदर बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता था और उसका बढ़ चढ़ के गजवे में हिस्सा लेना सहाबा के लिए काबिले रश्क था। जब उस आदमी की कारगुजारी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बयान की गई तो आपने क्या फरमाया था? कि वो जहन्नमी है, हालांकि वो गजवे में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? जहन्नमी है, नार में जाएगा वो। और हुआ भी ऐसा कि वो जहन्नम के वो शाम के वक्त पर जब जंग खत्म हुई तो बदन पर इतने ज्यादा जख्म थे कि चूर होकर के वो बर्दाश्त नहीं कर सका और खंजर उसने जमीन पर रखा और खुद उसके ऊपर गिरा और खंजर आर पार कर दिया और उसने खुदकुशी कर ली। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल के पास ऐलान करवाए थे, बुखारी में भी रिवायत मौजूद है मगाजी में, उस ऐलान में एक ऐलान ये करवाया था, इन्नल्लाह लयुअय्यिदु हाज़द्दीन बिर्रजुलिल फाजिर औ कमा क़ाल, अल्लाह ताला इस दीन को फासिक फाजिर आदमी से भी तकवीयत पहुंचाते हैं। ये किस्म उस हदीस में सरातन मौजूद है कि जिन्होंने ईमान कबूल नहीं किया लेकिन इल्म हासिल किया और दूसरों को फायदा पहुंचाया, अल मुअज्जमुल मुफारिस देखी आप लोगों ने, अल मुअज्जमुल मुफारिस मालूम है यहूदी ने लिखी है, उसका जामे और मुरतब यहूदी है। अब सारी इल्मी दुनिया के अंदर उसको कदर की निगाहों से देखा जाता है, एक से एक नए नए एडिशन उसके जो है शाये होते रहे। यहूदी हो के मत यहूदी का हो। मुसनद अहमद की एक फहरिस्त छपके आई इतनी जखीम एक ही जिल्द में, आप देखो तो अश अश कर जाओ कि मुसनिफ ने कैसा काम किया है मुसनद अहमद के ऊपर। आप पढ़ोगे तो पता चलेगा मुसनिफ ईसाई है, इस्तिफादा हो रहा है, लोग उससे फायदा उठा रहे हैं, ईसाई ने उसके ऊपर काम किया। तो ये है इन्नल्लाह लयुईदु हाज़द्दीन बिर्रजुलिल कुरान मजीद के मुतरजिम इंग्लिश जबान के अंदर भी ईसाई है, मेरे पास है उनके तराजिम, ईसाइयों ने तराजिम किए कुरान मजीद। तो ये है कि न ईमान है लेकिन इल्म कबूल किया, इल्म सीखा और दूसरों को फायदा हो रहा है उनके इल्म से। इन्नल्लाह लयुईदु हाज़द्दीन बिर्रजुलिल قال ابو عبد الله امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قال اسحاق دیکھو یاد رکھنا سند میں جہاں کہیں اسحاق مطلق نہ آئے تو اسحاق ابن راہوی مراد ہوتے ہیں مطلق اسحاق آئے تو اسحاق ابن راہوی مراد ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ उनके वालिद रास्ते में पैदा हुए थे इसलिए इनका नाम राहवई बन गया था। वालिद की पैदाइश रास्ते में हुई इसलिए राहवई इनका लकब बन गया, इसहाक इब्ने राहवई। अन अबी उसामता ये दूसरा तरीक लाए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह वकान मिनहा ताइफतन कयलतिल मा, यानी इस तरीक के अंदर वकान मिनहा ताइफतुन कयलतिल मा ये लफ्ज है या के साथ, लेकिन हकीकत बात यह है कि कयलत कोई लफ्ज ही नहीं, तसीफ हुई है कातिब से मा के साथ है, कबीलतिल मा यानी अमसकतिल मा है ना, तो उसकी जगह कबीलतिल मा यानी उस जमीन ने पानी को कबूल किया, पानी को रोक लिया, पानी को कबूल किया। असाबार्द पकान मिनहा नकीयत है, तो ये कयलत या के साथ ये तसहीफ हुई है, यानी दो एक बाग के बजाय एक नुक्ते के बजाय दो नुक्ते आ गए इसीलिए कई अलग हो। अब उसके बाद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की आदत है कि कोई लफ्ज हदीस में आया तो उसके करीब का कोई लफ्ज कुरान में है तो उसकी तहकीक करेंगे। अब किताबु तफसीर में देखेंगे कि लुगात की तफसीर करने जाएंगे तो इतनी तफसीर में चलेंगे वो कि हदीस एक तरफ ले जाएगी और लुगात ही की तहकीक करते चलेंगे वो। तो यहाँ ये थोड़ी झलक दिखाई है उसकी। काउन या अलूहुल मा, काउन या अलूहुल मा के ये लफ्ज जो है का किसको कहते हैं, वो जमीन जिसमें ऊपर पानी जाता है अंदर नहीं जाता। तो चूंकि कुरान मजीद के अंदर इसके करीब करीब एक लफ्ज आया का अन सफ सफल ला तराफी हाई वजों वाला अमता, लिहाजा करीब लफ्ज आया इसलिए उसकी तहकीक कर रहे हैं। हदीस में नहीं है लफ्ज लेकिन अब उसकी तहकीक बयान करें कि का किसको कहेंगे, कि ऐसी जमीन को कहेंगे जिसमें पानी ऊपर जाता है अंदर नहीं जाता। दूसरा लफ्ज आया सफ सफा, वही अल मुस्तवी मिनल अर्ज हमवार जमीन को कहा जाता है, हमवार जमीन। बस उसकी मुनासबत से कुरान में लफ्ज आया तो उन्होंने बतला दिया। तर्जमतुल बाब से तो वो लफ्ज मुताबिक होगा फ अलिमा व अल्लमा, सीखा और सिखलाया, इसके लिए ये पूरी रिवायत लाए।
भाई एक आज हम तकाजा था, वहां जाना जरूरी था।